मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। AFEIS के आज 28 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अवतार सिंह, आप फरीदकोट पंजाब से हैं, नेहा भानरिया आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, नारायण डी पाठक आप कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, और श्रुति तिवारी आप गंज बासौदा मध्य प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना है, और शायद इस सूचना से आप सब पहले से परिचित भी होंगे। 2-3 दिन पहले YouTube पर एक लेक्चर डाला गया है जिसका शीर्षक है महासागरीय जल की लवणता, यानी कि पानी में जो खारापन होता है, इसके ऊपर एक लेक्चर है। लगभग 1 घंटे का यह लेक्चर है। यदि आप ठीक समझते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को जरूर सुने, और ये जो लेक्चर है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उन्हीं का एक हिस्सा है। आज के मुख्य विषय के तहत फ्रेंड्स, मैं आलोचनात्मक क्षमता का विकास कैसे करें इस पर बात करूंगा, और मैं सीधे बात पर ही आ रहा हूं क्योंकि आज ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण खबरें है नहीं, सिवाय एक इस बात के कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंतर्गत कुछ तथ्यों की तरफ इशारा किया है। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो आप जानने की कोशिश कीजिए कि इनमें से सिविल सर्विस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। मन की बात के तहत उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को बहुत सामने लाकर बात की है, आत्मनिर्भर भारत, और उसके उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और खासकर अभी जो जनवरी में मेन एग्जामिनेशन होने जा रहा है उस दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात शुरू हुई है आपको मालूम है कि 2020 के मिड से ही शुरू हुई है। आपको जानना है कि जो आत्मनिर्भर भारत है किन अर्थों में मेक इन इंडिया से अलग है, किन अर्थों में भारत में आइए और उद्योग लगाइए उससे अलग है, मेड इन इंडिया से अलग है। थोड़ा सा जानने के बाद इसके क्या मूल तत्व हैं, किन स्तंभों पर ये आत्मनिर्भर भारत का जो विचार है ये खड़ा है, इसे आप थोड़ा सा जान लिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा इसे भी देख लें कि अभी तक भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद इस दिशा में क्या क्या कदम उठाए हैं, कुछ किया भी है या सिर्फ नारा देकर के बात खत्म कर दी है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली वोकल फॉर लोकल की बात कही थी, इसे भी आप देख लेंगे। आत्मनिर्भर भारत का ही एक स्तंभ है वोकल फॉर लोकल। दूसरी बात, उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के कही कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लेना है। 2021 शुरू हो रहा है ना, और इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रदीप सांगवान का, जो हीलिंग हिमालयाज नाम से एक अभियान चला रहे हैं। हीलिंग हिमालयाज यानी कि हिमालय में हमने बहुत सारे घाव पैदा कर दिए हैं, बहुत से हिमालय को घाव दिए हैं, अब उन घाव को भरे, हीलिंग हिमालयाज। 2016 से वो ये अभियान चला रहे हैं, और इसके तहत खासकर हिमालय के क्षेत्र में जो पर्यटक जाते हैं और जो पर्वतारोही होते हैं वो जो प्लास्टिक वगैरह छोड़ आते हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं, उसे साफ करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा एक उदाहरण है। कश्मीरी केसर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात की, कश्मीरी केसर के बारे में हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात कही है उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि आलोचनात्मक क्षमता का विकास कैसे करें। इसकी शुरुआत हम लोगों ने पिछले सप्ताह की थी, और खासकर मैंने शेखर गुप्ता जी का एक आर्टिकल आप लोगों को देते हुए ये कहा था कि ये जो आर्टिकल है ये समीक्षात्मक आलोचना या आलोचनात्मक समीक्षा का बहुत ही खूबसूरत नमूना है। इसे आप ध्यान से पढ़ें और देखें कि शेखर गुप्ता जी ने अपनी बात किस तरीके से आप तक पहुंचाई है, और बात पहुंचाने का जो उनका ढंग था वो आलोचनात्मक समीक्षा का ही ढंग था। स्वाभाविक है और होना भी चाहिए कि इसके बाद आप सबके मेल आए कि सर हम इसका विकास कैसे करें, इसके बारे में हमें बताएं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं खासकर हमारे ऑनलाइन के जो पेड स्टूडेंट हैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि इसको लेकर के बकायदे आप लोगों को फुल फ्लैश्ड लेक्चर प्रोवाइड किया गया है और मुझे उम्मीद है कि वो लेक्चर आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। आइए अब मैं सीधे इस विषय पर आता हूं। फ्रेंड्स, जो आलोचनात्मक समीक्षा है, आप इसके बारे में क्या धारणा रखते हैं? मैं आपसे अभी सीधे अपने प्रश्न का उत्तर चूंकि नहीं पा सकता, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर कुछ कुछ दे सकता हूं, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी क्या कमियां हैं, वो कमियां कैसे दूर हो सकती हैं, उसको किन बातों की जरूरत है, कहां वो अटक सकता है, इसकी थोड़ी मैं ये कह सकता हूं कि अच्छी समझ मुझे है। ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब दो अर्थों से लगाते हैं, दो बिंदुओं से लगाते हैं। पहला यह कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा राइटर्स को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर आलोचनात्मक दृष्टि आ जाएगी। नंबर वन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना। जो दूसरा अर्थ वो लगाते हैं वो केवल पढ़ाई करने तक सीमित नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा रटना, याद करना। हमारे दिमाग में जितने ज्यादा से ज्यादा तथ्य रहेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा बातें मौजूद रहेंगी, उतनी ही ज्यादा हमारी आलोचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। जबकि दोस्तों, ये दोनों ही बातें मुझे सच मालूम नहीं पड़ती हैं, तो फिर सवाल यह है कि ये दोनों बातें आपके दिमाग में आई कहां से हैं? मैं समझ सकता हूं कि कहां से आई है, क्योंकि जब हम लोग प्राइमरी, मिडिल स्कूल, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो हमारी पढ़ाई के केंद्र में यही बातें होती हैं। चलिए, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना तो नहीं होता है, क्योंकि एक फिक्स सिलेबस होता है और उस सिलेबस पर आधारित बकायदे किताबें, प्रिंटेड किताबें होती हैं, हम उनमें से एक दो किताबें ले लेते हैं और उनको पढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ना तो उसमें नहीं होता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रटना उसमें होता है कि हम कितना ज्यादा रट सकते हैं, यानी कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जब हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है उसकी डिमांड भी यही होती है कि वो ये जांच सके कि आपने कितनी सारी बातें याद की हुई हैं और उनको आप लिखाइए। यानी कि यूं कह लीजिए कि हमने कुएं से पानी निकाला, एक बाल्टी में पानी निकाला और पानी निकालने के बाद अपने घड़े में रख लिया और जरूरत पड़ने पर उस घड़े में से पानी निकाल करके आपको पिला दिया। हमारी जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन की पूरी जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वो यही है। और जो हम लिख करके आते हैं उसके आधार पर हमें मार्क्स भी मिलते हैं, और मार्क्स ही नहीं मिलते बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यानी कि जिसकी स्मरण शक्ति जितनी अच्छी है और उसने जितनी ज्यादा बातें रट ली हैं, वह उतने ही अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। वहां से यह धारणा हम सबके दिमाग में बैठ चुकी होती है कि नहीं, हम जितना ज्यादा से ज्यादा रटेंगे उतने अच्छे आंसर लिखकर आ पाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं एक छोटा सा प्रश्न आप सबसे फिर कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इसको बहुत कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। और याद रखिए कि यह भारत की ही कठिन परीक्षाओं में से एक नहीं है, बल्कि दुनिया की कठिन परीक्षाओं में से एक है। और मजेदार बात यह है कि इसके लिए जो लेवल रखा गया है एजुकेशन का, वो ग्रेजुएशन रखा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, एमफिल या पीएचडी नहीं है, केवल ग्रेजुएशन रखा गया है। और बड़ी बात यह कि ग्रेजुएशन में भी कोई स्कोर का मापदंड नहीं रखा गया है कि कम से कम आप अगर ग्रेजुएट हैं तो फर्स्ट क्लास तो हो, या यही कह दें कि भैया 55% से एबव मार्क्स हो। चलिए, उतना भी नहीं था यार, 50% तो रख ही देना चाहिए था कि भाई जो जिनके ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर मार्क्स होंगे, 50% या उससे ऊपर मार्क्स होंगे, उन्हें ही केवल सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, वो योग्य होंगे। ऐसा भी उन्होंने नहीं रखा। ऐसा क्यों? कभी इस पर आप विचार कीजिए। आप मार्क्स के सीमा नहीं निर्धारित कर रहे हैं, आप सामान्य ग्रेजुएट स्टूडेंट चाह रहे हैं, तो भैया जब सभी स्टूडेंट बैठ सकते हैं, लाखों में स्टूडेंट बैठते भी हैं, तो फिर ये दुनिया की कठिन परीक्षा हुई कैसे? कठिन परीक्षाओं में से ये कैसे हुई? हमारे देश की इतनी कठिन परीक्षा ये क्यों मानी जाती है? ऐसा क्या हो गया फिर? यहां आपको सोचना पड़ेगा। आप सिलेबस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस भी ऐसा नहीं है कि इसका अनलिमिटेड है। बहुत लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट। लोग भ्रम पैदा करने के लिए कहते हैं कि इस धरती और आसमान के बीच में जितनी भी चीजें हैं उनमें से कुछ भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्या ये दोस्तों सच है? अगर कोई आपसे ये बात कहता है तो क्या आपने इसका परीक्षण किया है कि ये सच कहा जा रहा है या भ्रम पैदा किया जा रहा है, या कहने वाला खुद ही इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसको लगता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है? आपने अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो सच ही हो। हो सकता है कि वो मेरा अपना सच तो है लेकिन वो सबका सच नहीं हो सकता, यहां तक कि वो सिविल सर्विस का सच नहीं हो सकता। मुझे यही भय लगता था कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने सब कुछ बटोरना 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 शुरू कर लिया, खूब बटोर लिया, सेलेक्ट हुआ नहीं तो मुझे लगा कि नहीं, बटोरने में कुछ कमी रह गई यार, और बटोरना चाहिए था तो शायद हम सेलेक्ट हो जाते। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कुछ ज्यादा ही बटोर लिया था, फालतू की चीजें बटोर ली थी और फालतू की चीजें बटोरने में जो सही चीजें थी वो गायब हो गई थी, ये मैं नहीं सोच पाता। बेहतर होगा कि आप इसे चेक करें। और चेक कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीके से। आपके पास अपना सिलेबस है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं। आप बकायदे उन क्वेश्चन पेपर्स से सिलेबस को मिलाइए और ध्यान से समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिए। 4-5 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, कैसा कैसा पूछा जा रहा है, कि क्या सच में कुछ भी पूछ लिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में यह धारणा है कि कुछ भी पूछा जाता है तो इसे ठीक करना बेहद जरूरी है। अभी तक मैंने आपसे आलोचनात्मक क्षमता के बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन जो बात मैंने की है इस बात के बिना मैं आगे की अगर बात कर भी देता तो उसका ज्यादा अर्थ दोस्तों नहीं निकल पाता। मैं आगे इस पर बात करूंगा। और यदि आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, आत्मसात करके अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि जो मैंने अभी YouTube पर एक लेक्चर की बात कही है, महासागरीय जल की लवणता, अगर आपने इसे नहीं सुना है तो प्लीज आप इसे एक बार जरूर सुने, क्योंकि इस लेक्चर को सुनने के बाद ही शायद अब मैं जो आगे इस विषय पर बोलूंगा उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस आज इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: ज्योति गुप्ता ग्वालियर मध्य प्रदेश से, प्रतीक पुरे, सूर्यप्रकाश मौर्य गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अनूपराज जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से, बिन्नी कुमारी सारण बिहार से, सैकत बैनर्जी और अजीत कुमार साहनी रेवती उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।